हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रीति 3 घंटे आयुष्मान की गोद में सिर रख के सुकून से सोई थी। उसके बाद भी आयुष्मान ने आज उसे कोई काम हाथ नहीं लगाने दिया था। दोपहर तक प्रीति के कपड़े और फोटो भी आ गए थे, जिन्हें प्रीति के कहे अनुसार आयुष्मान ने बेड के पीछे की दीवार पर लगा दिया था। प्रीति ने कमरे में कुछ और बदलाव किए थे, जिससे अब उस कमरे को देखकर लग रहा था कि वो उन दोनों का कमरा है। शाम हुई तो आंटी प्रीति को बुलाने आई थीं। सोसाइटी की सब औरतें एक साथ ही कथा सुनने वाली थीं, जिसका इंतजाम सोसाइटी सेक्रेटरी ने नीचे गार्डन में किया था। उनके कहने पर प्रीति तैयार होने चली गई थी। आयुष्मान बाहर ड्राइंग रूम में आंटी के साथ बैठा था, जो प्रीति की पूजा की थाली सजा रही थी। प्रीति ने जिद करके आयुष्मान को वही कपड़े पहनाए थे जो वो कल उसके लिए लाई थी। कुछ देर बाद कमरे से प्रीति की आवाज आई थी, खुराना साहब जरा अंदर आइए। आयुष्मान ने उसकी आवाज सुनकर आंटी को देखा था तो वो मुस्कुरा रही थी, शायद कुछ समझ रही थी वो। आयुष्मान ने झेंपते हुए अपने बालों में हाथ घुमाया था और कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में कदम रखते ही उसने सवाल किया था, क्या हुआ प्रीति, क्यों मुझे कमरे में बुला रही थी? पता है बाहर आंटी बैठी थी, गलत समझ रही थी वो और मुस्कुरा रही थी। कितना एम्बैरेस्ड फील कर रहा था मैं। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी प्रीति के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े थे, वो एकदम से आयुष्मान की तरफ पलट गई थी और कमर पर हाथ रख के उसे घूरते हुए बोली थी, अच्छा मतलब अब मैं जरूरत पड़ने पर अपने पति को बुला भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें किसी और के सामने अपनी पत्नी के बुलाए जाने और उसके पास जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे अपनी पत्नी के नहीं गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो। प्रीति के तेवर देखकर आयुष्मान सकते में आ गया था और तुरंत ही बात संभालते हुए बोला था, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कह रहा था कि आंटी गलत समझ रही थी तो ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। अच्छा जी, तो मतलब कोई अपनी मर्जी से कुछ भी समझे तो उसका सोचकर मैं आपको जरूरत पड़ने पर बुलाऊं भी ना, मतलब ये हद नहीं हो गई? मेरे पति को मैं जरूरत पड़ने पर बुलाती हूँ तो इसमें गलत समझने वाली कौन सी बात है? और कोई क्या सोचता है इसके बारे में मैं क्यों सोचूं? जिसे जो सोचना है सोचता है, और आप भी ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपनी बीवी पर ध्यान लगाइए। प्रीति एक बार फिर आयुष्मान पर भड़क उठी थी और वो बेचारा बस आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखता ही रह गया था। प्रीति, तुम इतनी सी बात पर इतना भड़क क्यों रही हो? कुछ पल बाद आयुष्मान ने हैरानगी से प्रीति से सवाल किया था, जिस पर प्रीति ने बुरा सा मुंह बनाया था। फिर अपने खुले बालों को कंधे से आगे करने के बाद अपनी पीठ आयुष्मान को दिखाते हुए मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली थी, भड़कू नहीं तो और क्या करूं मैं? पिछले 10 मिनट से डोरी बांधने की कोशिश कर रही हूं, पर ये मुई डोरी बांधने में ही नहीं आ रही। ऊपर से मदद के लिए आपको बुलाया तो आप और मदद करने के जगह मुझे सुनाने लगे, जैसे मैंने तो आपसे गुटरगु करने के लिए आपको अकेले में बुलाया हो। अब डोरी नहीं बांध रही थी तो आपको नहीं तो क्या आंटी को बुलाती मैं? आयुष्मान अब सारा माजरा समझ गया था कि क्यों प्रीति इतनी चिढ़ी हुई है। हालांकि उसके गुटरगु वाली बात से वो चौंक भी गया था कि प्रीति कैसे इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह रही थी, पर उसका परेशान चेहरा देखकर उसने सिर झटका था और उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला था, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही हो तुम, साथ में गुस्सा करके अपना खून भी जला रही हो, लाओ अभी बांध देता हूँ मैं। प्रीति ने बुरा सा मुंह बनाया था और उसके तरफ पीट करके खड़ी हो गई थी। आयुष्मान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था और डोरियों को पकड़कर बांधने लगा था। बहुत सावधानी बरतने पर भी उसकी ठंडी उंगलियां प्रीति के खुली पीठ को छू गई थीं और प्रीति उसके स्पर्श से जम सी गई थी। उसकी पलकें झुक गई थीं, रोम रोम आयुष्मान की इस छुअन से सिहर उठा था और शरीर में कंपन महसूस करते हुए आयुष्मान जल्दी से अपना काम करके पीछे हट गया था। हो गया, मैं बाहर हूँ, जल्दी आना, आयुष्मान ने एक सांस में ही सब कहा था और बिना प्रीति के जवाब का इंतजार किए वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद प्रीति ने हौले से पलके उठाकर अपनी छवि को शीशे में देखा था तो लगा था जैसे आयुष्मान के छुअन से उसका रूप निखर गया हो। प्रीति के लबों पर भीनी भीनी से मुस्कान फैल गई थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई थी और आयुष्मान की नज़र उस पर पड़ी थी तो वो अपलक उसे देखता ही रह गया था। उसकी दिलाई रेड एंड ग्रीन कॉन्ट्रास्ट वाली सिल्क साड़ी, जिसे प्रीति ने सलीके से बांधी हुई थी, और ये रंग खूब खिल रहा था उस पर। बालों को जूड़े में बांधा हुआ था, जिस पर आयुष्मान का लाया गजरा सज रहा था। बीच की मांग सुर्ख सिंदूर से सजी थी, जिसकी लालिमा उसके चांद से सोने चेहरे की खूबसूरती को निखार रही थी। माथे पर दोनों भौहों के बीच सितारों से चमकती स्टोन वाली बिंदी, काजल से सजी बड़ी बड़ी आँखें, सुर्ख रंग में रंगे लब, कानों में सोने के झुमके, गले में हमेशा अपने अधिकार जमाए रहने वाला मंगलसूत्र, दोनों हाथों की मेहंदी लगी कलाइयों में खूबसूरत सी भरी भरी लाल हरी चूड़ियाँ, पैरों में खूबसूरत सी पायल बिछिया मतलब चुटकी, आज 16 श्रृंगार किए हुए प्रीति आयुष्मान के बेचारे मासूम से दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थीं। आयुष्मान की निगाहों को खुद पर टिका देखकर प्रीति के लबों पर गहरी मुस्कान छा गई थी और उसे अमृतसर में आयुष्मान की हुई तारीफ याद आ गई थी। आज फिर उसकी निगाहें ठहरी थीं, जो प्रमाण थी कि आज फिर प्रीति बेहद हसीन लग रही है। प्रीति को अपलक निहारते हुए आयुष्मान की नज़र जब उसके मुस्कुराते लबों पर पड़ी थी, जो उसके सुर्ख लबों को देखकर मन में हलचल होने लगी थी, और अगले ही पल आयुष्मान ने प्रीति पर से निगाहें फेर ली थीं। अब जब मोहब्बत इतनी गहरी हो तो कभी कभी दिल का मचलना भी लाजमी ही था, पर आयुष्मान रोक रहा था खुद को प्रीति की तरफ बढ़ने से। आयुष्मान का यूं निगाहें फेरना प्रीति की मुस्कान को फीका कर गया था।